1964-1962-6060।
Happy 50th birthday Brampton. As khushi de mauke te City of Brampton 70 te 70 to vadh umar wale shehriyan nu special gift offer kar rahe hai. Free annual recreation membership. Jehdi tuhanu fitness de sariya programma te activities vich shareek hon da free mauka devegi. Brampton Recreation Center visit karo te apni free membership claim karo. Eh offer pehli June to shuru ho rahi hai. Aur jankari le brampton.ca/membership.
टेलीटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेलीटाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
एशियन फूड सेंटर की नवी लोकेशन की ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है 12 अप्रैल नू शहर गुएल्फ विच। इस मौके पर 12 अप्रैल तो 21 अप्रैल तक लग चुकी है ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल सेल। शेर देसी स्टाइल आटा 13.99, आमंड्स 3.99 पर पाउंड, 4 पाउंड शेर बेसन 5.99। 100 डॉलर की ग्रोसरी करने ते पाओ हॉट केस या कैसरोल बिल्कुल फ्री, 150 डॉलर की ग्रोसरी ते पाओ फ्री कुकर। एशियन फूड सेंटर की सारिया ही लोकेशन से तुसी ताजे फल फ्रूट सब्जियां भांडे और मिठाइया भी ले सकते हो। कॉल एट 416-740-3262।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ता, इस गाड़ी से प्रोड्यूसर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
मजे मजे के टिक्के, मजे के कबाब,
खाना हो तो आ जाओ शाहीन टिक्का और कबाब।
ऑल योर फेवरेट डिशेस प्रिपेयर्ड टू परफेक्शन एट शाहीन टिक्का एंड कबाब।
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब में सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
जी सामने नाजरी, वेलकम बैक अगेन। एंड 5:32 हमारी घड़ियों पे हो चुके हैं। स्टिल ब्यूटीफुल गॉर्जियस आउटसाइड, 17 डिग्रीज टेम्परेचर, वाओ वाओ इज राइट 17 डिग्रीज टेम्परेचर। कल तो फिर बारिश होनी है, तो आज एंजॉय कर लें जितना भी करना है आपने। अगर बैकयार्ड वगैरह का काम करना हो ना आपने, तो भाई बैकयार्ड का काम कर लें, फ्रंट यार्ड को सफाई कर लें अपनी, और बस तैयार हो जाए। और चाहे तो आज शाम को वो ग्रास सीड्स होती है ना, तो ग्रास सीड्स, स्कॉच ग्रास सीड्स आती हैं, तो वो ग्रास सीड्स डाल दें वहां पर अपना, क्योंकि कल बारिश होनी है। तो ग्रास सीड्स जब डालते हैं जब बहुत सनी ना हो, मींस के ऐसा ना हो कि पूरा दिन सनी है और आपने एक दिन पहले डाल दिया, तो आज डाल दें ताकि कल बारिश आए तो फिर आपकी घास भी बड़ी जबरदस्त किस्म की घास निकले साहब। और यस, अगर उस पर खाद वगैरह डालनी हो, फर्टिलाइजर वगैरह डालना हो, तो दैट इज समथिंग यू कैन डू इट। एनीवे, अब सब मैं तो आपको लेके जा रहा था गीत की तरफ, और आमिर जी ने म्यूजिक डाल दिया यहां पर। एनीवे, एक गीत की तरफ ले चलूंगा मैं आपको। मैं चाह रहा था कि आपकी मुलाकात करवाता मैं जैस्मीन परमार से, मॉर्टगेज की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि आज जो चेंजेस लेके आए हैं फेडरल बजट में, तो उसके मुताबिक बात करनी थी मैंने। तो चलिए, जब तक उनसे रापा नहीं होता मेरा, मैं आपको एक गीत सुना देता हूं यहां पर। और ये गीत भी बहुत खूबसूरत गीत है, उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में, आंखें गीत का नाम है। पहले ये गीत सुनिए, उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर।
मुसव्विर हो गई आंखें, तुम्हें सोचा तो यूं सोचा, तसव्वुर हो गई आंखें, तुम तुम्हें जो लिखती है ये शायर आंखें बसते हमारे हैं ये बागिर आंखें कहीं मजबूर हैं ये आंखें कहीं मगरूर हैं ये आंखें मोहब्बत की कहानी बड़ी मशहूर है ये आंखें तुम्हें जो लिखती है ये शायर आंखें बसते हमारे हैं ये बागिर आंखें तुम्हें देखा तो यूं देखा मुसव्वर हो गई आंखें पर नारियों को सजा है गलती आंखों की लगे दिल की खता है समझा लो जितना फिर भी आंखें सुने ना बोलो ना बोलो आंखें बोले रुके ना हंसी भी देखी देखी है रान आंखें दिल के गराते देखी मेहमान आंखें तुमको नहीं माने ना ये काफिर राखे कभी शिकायत करती कभी मशकूर है ये आंखें मोहब्बत की कहानी है बड़ी मशहूर है ये कभी पार लगे हैं आंखों के पीछे आंखें लेके फिरे यूं आंखों में शीशा तेरी देखा करे यूं अपनी सी देखी देखी अनजान आंखें किससे में यारो दिल के गुनगान आंखें दिल का छुपा भी कर दे ये जाहिर आंखें जादू ही कर हैं कहीं सामने आ बैठी कहीं मफरूर है ये आंखें मोहब्बत की कहानी में बड़ी मशहूर है ये आंखें तुम्हें जो लिखती है ये शायर आंखें बसते हमारे हैं ये बागिर आंखें तुम्हें देखा तो यूं देखा मुसव्वर हो गई आंखें
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान लेजर टूथ वाइटनिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट डेंटल इम्प्लांट्स
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स हेल्थी स्माइल्स एंटेरियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट यूनिट 104 मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100 कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री Dentistry on Mrs. Sarga.
کینیڈین امیگریشن کے لاس اور پالیسیز میں مستقل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا کام ماہرانہ طریقے سے تازہ ترین معلومات کے تحت کیا جائے میرا نام یاسمین طیبی ہے اور میں گزشتہ 25 سالوں سے سٹیزن شپ پی آر رینوولز اسپاؤزل اسپانسرشپ اور ایجنسی کے پیچیدہ کیسوں کو کامیابی سے کر کے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کر چکی ہوں kerimsolutions.ca پر جا کر ہماری فرم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہمارے آفس میں سرٹیفائڈ اردو ٹو انگلش ترجمے کی بھی سہولیات موجود ہیں
Grill in the Hut, Mrs. Saga mein. Order via phone. Imran bhai ko call kare.
Intahai lazeez biryani khana ho, ya phir kadai khana ho, ya phir steaks ko enjoy karna hai. To aap order place kijiye 905-405-8383. Grill in the Hut.
السلام علیکم, میں شبہات علی فرام میگا منی ایکسچینج. ہم تقریباً 18 سال سے منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو پاکستان پیسے بھیجنے ہیں یا منگوانے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں. ہمارا فون نمبر ہے 905-279-4754 اور ہمارا ایڈریس ہے 4196 کوتھرا روڈ مسیساگا.
خوبصورت دانت, با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو, آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمن فلنگس کراؤنز بریجز کلیننگ ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس فری کنسلٹیشن دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ 299-7466. گاڑی گھر یا کمرشل جیسا کہ بزنس ٹرکس ڈیلیوری وہیکلز کارگو وینز ورک شاپس گروسری سٹورز ریسٹورینٹس کی انشورنس کے لیے وقار عظیم سے رابطہ کیجیے گا. وقار عظیم یقینی بنائیں گے کہ کار گھر یا کمرشل انشورنس کم از کم ریٹ پر لے کر دیں مگر کوریج آپ کو بہترین سے بہترین ملے. یقیناً اپنے پیسے اور وقت کی بچت کے لیے ایماندار اور ریلائبل سروس موسٹ کمپیٹیٹو ریٹس کے لیے وقار عظیم 4163022522 302-2522.
جی صاحب ناظرین, ویلکم بیک اگین. اینڈ صاحب, ابھی بھی یہ جاری ہے ہماری جو کرسٹی فریلینڈ ہیں اور وہ آف کورس شی از اے فائنانس منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر, تو انہوں نے ابھی نیا بجٹ پیش کیا ہے. کیا ریئیکشن ہے دوسرے اپوزیشن کا, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر بعد. مگر موٹی موٹی چیزیں جو ہے, 52.9 بلین ڈالر کا نیو اسپینڈنگ. ون تھنگ اباؤٹ لبرلز, دے اسپینڈ اے لاٹ آف منی. کل کا نہیں سوچتے, وہ کہتے ہیں اسپینڈ کرو. آج کے لوگ جو ہیں وہ کم از کم خوش رہے ہیں. 3.9 ملین ہومز کے لیے انہوں نے اسپینڈنگ کی ہے کہ بھائی نیو ہومز بنائیں گے جو افورڈیبل ہاؤسنگ, 3.9 ملین. اور مارگیجز کا اپ ٹو 30 ایئرس کی انہوں نے جو ہے اموٹائزیشن دی ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم بائرس کے لیے افورڈیبل ہو جائے, وچ از 30 ایئر اموٹائزیشن ان مارگیجز. 39.8 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے, دیٹس اوکے. 39.8 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ, آپ امریکہ کو دیکھ لیں, سب سے رچ اینڈ سب سے بڑا کنٹری ہے, موسٹ پاورفل کنٹری. ان کے ڈیفیسٹ جو ہیں وہ ٹریلینز میں ہیں, ٹریلینز میں. ناٹ ٹو وری اباؤٹ اٹ. 39.8 بلین ڈالر کا ہمارا ڈیفیسٹ رہے گا. اور عام لوگوں کے لیے صاحب, ٹوبیکو اینڈ ویپنگ, یہ دو چیزیں ہوتی ہے, ایک ٹوبیکو ایک ویپنگ, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو شراب وغیرہ ہے مشروبات, ان پہ جو ہے ٹیکس تو ہر پچھلے میرا خیال ہے کہ 25 سال سے آپ دیکھ لیں ان چیزوں پہ کی تو پرائسز بڑھنی ہے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. تو سب وہ بھی ہو گیا کہ ٹیکس بھی ٹوبیکو اور ویپنگ پہ آج کے بعد جب خریدیں گے آپ تو اس پہ آپ کو نظر آئے گا کہ سب اس کی بھی پرائسز بڑھ گئی. اور بہت ساری چیزیں ہیں, بے انتہا چیزیں ہیں, یہ جو ہے اس پہ بحث و مباحثے چلیں گے. اب آف کورس اپوزیشن نے تو ماننا ہی نہیں ہے اس چیز کو. انہوں نے کہنا جی یہ تو بڑا غلط چیز ہے, انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. ہاں, جو غریب لوگ ہیں جو ابھی شیلٹرز میں جگہیں نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی گورنمنٹ نے بہت ملینز آف ڈالرز دیے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو بھی ٹیکس جو ہے وہ ویلتھی اینڈ جو بڑی کمپنیز ہیں ان پہ انہوں نے ایکسٹرا ٹیکس لگایا ہے. اینڈ دیٹس وے دا منی از کمنگ, دا ریونیو فار دا گورنمنٹ. جو اسپینڈ کر رہے ہیں تو آتا ہے بات کہ بھائی آپ اسپینڈ تو کر رہے ہیں مگر یہ پیسہ لے کے کہاں سے آئیں گے آپ, تو ان لوگوں پہ جو ہے انہوں نے کچھ ٹیکسز ڈالے ہیں. اور چلیے صاحب بات کریں گے اس پہ, مگر ایک گیت ہے آصم اظہر کی آواز میں. پہلے اس گیت کو آپ سماعت فرمائیے, یہ مراد کی ہر پل جیو کے ساتھ دل ہارا سماپت ہو گئی.
پوچھو نا میرے دل سے کیا حال ہے, نظر ملی جب ان سے بے حال ہے, اس کی
خواتین کو تو زیورات بہت اچھے لگتے ہیں, چوڑیاں لے لو, کڑے لے لو, چینز لے لو, سٹون جیولریز, روبی جیولرز کا نام یاد رکھنا. شادی بیاہ ہے یا عام کوئی چھوٹا برتھ ڈے پارٹی اپ یا کسی کو گفٹ دینے کے لیے, یو مسٹ وزٹ روبی جیولرز. گولڈ کا ٹریڈ ہے یا پھر ریپیئر ہے, روبی جیولرز 7086 ایئرپورٹ روڈ, 9056776888. اکرم بھائی یا اسلم بھائی سے بات کیجیے گا.
مسز سازا اور اس کے آس پاس رہنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری, مومن حلال میٹ اینڈ گروسری, تازہ سبزیاں, پھل, مسالے, حلال گوشت, میرینیٹڈ گوشت اور کچن کی ضرورت کا سب سامان, وہ بھی ڈسکاؤنٹ سیل پرائس میں. اوپن 7 days a week صبح 10 to 9 تک. وزٹ کریں مومن حلال میٹ اینڈ گروسری, 1010 ڈریم کریسنٹ, یونٹ 12 ان مسز سازا, 9052861998. مومن حلال میٹ اینڈ گروسری. Spear and McKay, Menswear Clothing, फिट क्वालिटी वैल्यू एक ही जगह पर। कनाडा में द ओनली साउथ एशियन ओन कस्टम सूटिंग एंड शर्टिंग कंपनी बर्बरी हैरी रोजन होगो बॉस जैसी क्वालिटी आजमाइश शर्त है। 100% इटालियन वुड से बने सूट्स सिर्फ 249.99 में। और भी जबरदस्त डील्स के लिए विजिट करें स्फीयर एंड मके मेंस वियर 1535 मिरसा ड्राइव यूनिट 1920 मिसिसागा। कॉल 905-670-3388
अकाल ट्रक एंड लूम ताड़े ट्रक बादशाह दी क्वालिटी सर्विस रिपेयर ऑयल चेंज वॉश ते मेंटेनेंस।
एक और खुशखबरी
नॉर्थ अमेरिकन चाइनीज ते कोरियन नवे ते इस्तेमाल शुदा टायर्स विद फुल वारंटी।
अकाल ट्रक एंड लूम 1776 मेयरसाइड ड्राइव 905-565-1100
नाज़रीन वेलकम बैक अगेन एंड 5:21:03 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और 17 डिग्री टेम्परेचर ट्यूसडे अप्रैल 16th साहब ट्यूसडे का दिन है आज तो अब चलेंगे हम आपको खबरों की जानिब लेके मगर इससे पहले बता दूंगा कि दिस पोर्शन ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा। डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा ये आपको फैमिली प्रेसिस कॉस्मेटिक एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम बिकॉज दे हैव टू क्लिनिक्स एंड बोथ द क्लिनिक्स आर इन ब्रैम्पटन। न्यू इमरजेंसी पेशेंट्स आर ऑलवेज वेलकम इनका कहना है। ये कहती हैं डॉक्टर नाजिया रहमान कॉम्प्रीहेंसिव डेंटल केयर मॉर्निंग इवनिंग वीकेंड्स एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड ईजी पेमेंट ऑप्शन इनके पास हैं एंड लाइक आई सेड न्यू पेशेंट्स आर ऑलवेज वेलकम देयर। आप फोन कर लें डॉक्टर नाजिया रहमान को 9058721100 इनका फोन नंबर है। ओपन माइक कैफे सब आपको मिलेगा कहां पर 1310 डंडा स्ट्रीट डंडास एंड डिक्सी के कॉर्नर पर इनमें से सागा और पाकिस्तान के लजीज खाने क्योंकि शेफ्स भी फ्रॉम पाकिस्तान दे केम ऑल द वे फ्रॉम देयर टू हेयर शेफ्स पाकिस्तानी हैं। 416-526-6800 इनका फोन नंबर है। बड़ी तारीफें सुनिए आप इनके व्यूज पर चले जाइए देखिए आपके लोगों ने जो ट्राई किया इनको एंड दैट इज अ लॉट बहुत अच्छे व्यूज हैं इनके। अगर ईस्टर्न में रह रहे हो और ग्रोसरी की जरूरत है तो बटाला सुपर मार्केट में पहुंच जाइए। बटाला सुपर मार्केट में चाहे हलाल चिकन हलाल गोश्त इसके साथ साथ हर किस्म की ग्रोसरी आपको मिलेगी। बटाला हलाल मीट पे या बटाला ग्रोसरी स्टोर पे आपको फोन नंबर है इनका 4162-643-111। ये समझ लीजिए कि राइट एट द कॉर्नर ऑफ एग्लिंटन एंड मार्कम इन स्कारब्रो 416-264-3111 बटाला सुपर मार्केट का फोन नंबर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज के सुल्तान भाई का कहना है कि अगर आपने टीवी और अप्लायंसेज या ऐसी कोई भी चीज चाहिए हो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की तो आप पहुंच जाइए। कहां पर जाना है आपने 801 बोवेड एंड चिंकूजी काउंटर पर इन ब्रैम्पटन। सुल्तान भाई एंड ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज का फोन नंबर है 9054502828। हाँ साहब बैठे वो बैठे हुए वो वही वही जिसका मैंने जिक्र किया था सबसे पहले फिर आ गए तो क्या करेंगे सिर्फ दाढ़ी की कमी है एनीवे शाजिया मलिक जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ। मैं भी आपको किसने कहा मेरे पास दाढ़ी नहीं है, मेरे पास पेट में दाढ़ी है ना।
अच्छा
ये
रिवर्स गेट लगाया हुआ था,
लगाया हुआ, आपको नजर नहीं आ रही वो।
ओके समझ गया जी,
समझ गए ना। लेकिन वैसे जिसके पेट में कहते हैं ना दाढ़ी होती है, वो बहुत ज्ञानी होता है, वो आउल होता है। तो आप इसीलिए मेरे से इतना ज्ञान लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा आप इतने खुश नसीब हो मेरे साथ काम कर रहे हो।
आउल को उर्दू में क्या कहते हैं?
उल्लू।
आई रेस्ट माई केस।
जी
लॉर्ड, आई रेस्ट माई केस।
मजद भाई रेस्ट केस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है आप मेरे साथ काम कर रहे हैं।
मैं तो कह रहा हूँ कि आपको
इतना ज्ञान दिया मैंने आपको,
अगर आउल के साथ काम कर रहा हूँ मैं।
ओल्ड आउल।
ओके
एग्जैक्टली
उर्दू में नहीं कहूंगा उसको।
क्या ले आप करके मजद भाई?
नहीं।
अच्छा आप जैसा एक मासूम है ना मजद भाई, आप देखे ना आप मेरे मुझे छेड़खानी करते हैं, फिर आपके मासूमों के साथ क्या क्या कुछ होता है।
अच्छा
जी, वो ना वो आप जैसा एक मासूम था, जो जैसे आमिर भी अपने आप को खूबसूरत आदमी करता रहता
है।
हाँ तो वो अच्छा चलो मैं चश्मा चेंज कराऊंगी। तो वो जो है वो कहता है आपकी तरह के मासूम और आमिर की तरह के हर वक्त शीशे के सामने खड़ा ना अपने बाल बनाता रहता था। तो कहता था कि खूबसूरत आदमी, अपने आप को खूबसूरत आदमी। तो उसकी बीवी ने कहा कि देखो अगर तुम्हें किसी ने एक गलत फहमी डाल दी है ना तुम खूबसूरत हो, तो उस गलत फहमी में ना रहो, लेकिन मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शीशा देखते रहो, कोई मसला नहीं है। बेस्ती करने का तरीका आप देखें,
बेस्ती करने का तरीका,
कितने प्यार से बेस्ती की है खूबसूरत आदमी की।
तो वो देखिए अभी था ना, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है, तो कहता है कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारे दांत, तो वो कहती है छोड़ो, फिर कहता है तुम्हारे दांत, कहती है छोड़ो ना भाई, फिर कहता है तुम्हारे दांत, तुम्हारे होंठ, कहती है छोड़ो ना भाई, तो कह रहे तीसरे से
छोड़ दो। फिर मयूर भाई आप सोचिए उस मासूम के साथ क्या हुआ है।
वो लेटर ऑन द स्टोरी जो है ना वो बाद में बताएंगे।
हाँ वो बाद में। जैसे मेरे मुझे याद है मेरे वालिद साहब जो है बचपन में हम जो है बड़ा फैंटेसाइज करते थे ना ये इसकी रोमियो जूलियट की स्टोरी और ये सारे जो है, तो जो हम वो पढ़ते होते थे अपने स्कूल्स में भी, जो स्नो व्हाइट एंड ऑल दैट, वो तो जी वो प्रिंस आया उसको ले गया एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो सिंड्रेला की स्टोरियां।
हाँ जी।
तो मेरे वालिद साहब हमेशा कहते होते थे नादानो ये हैप्पीली एवर आफ्टर जो है ये सिर्फ कहानियों में होता है,
कहानियों में होता है,
हैप्पीली एवर आफ्टर शादी के बाद बिल्कुल नहीं होता।
तो सिर्फ कहानियों में,
ये सिर्फ कहानियों में होता है।
तो कहानियां पढ़ लिया करो।
हाँ बस कहानियां पढ़ लेते हैं खुश हो जाते हैं।
हाँ जी हैप्पी आफ्टर
बस। तो वही मेरे वालिद साहब कहते थे हैप्पी एवर आफ्टर सिर्फ कहानियों में है, है जी?
तो ये हमारी जनरेशन का कसूर नहीं है। हाँ। उनका भी जनरेशन का कसूर।
हाँ।
जी क्या करेंगे,
क्या करेंगे मजीद भाई, बस उन्होंने असल में ना वो फाउंडेशन सही नहीं रखी, तभी ये सारी जनरेशन टेढ़ी चल रही है। इसलिए अगर सीधे रखते हैं तो फिर हम भी सीधे रहते, ठीक है? अच्छा जनाब हम आपको बता रहे हैं कि जनाब जुनून का कॉन्सर्ट आ रहा है May 4th को, तो आप ticketmaster.ca पे जाके अपने अर्ली बर्ड टिकट्स अगर आपको लेने हैं आप ले लें, आपको काफी सस्ते मिलेंगे। वैसे भी कोई टिकट्स इतने हाई प्राइस पे नहीं है, और आपको पता ही है कि बड़ा जबरदस्त किस्म का ये बैंड है, और आप उनके साथ स्टेज पे चढ़ के मजे भाई।
हाँ।
स्टेज पे चढ़ के आप उनके साथ
बड़ी चीज है,
बड़ी बात है, बिग डील है जी, ऐसे है। और जनाब चांदनी बैंकवेट हॉल आपको पता ही है कि मैंने आपको बड़ी दफा बताया 1400 लोगों को आप बुला सकते हैं, प्लस मैं और मजद भाई हैं, अगर आपका दिल आ जाए आमिर पे तो टाई बंदा बुला सकते हैं 770 से। और बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये जो है 32 रूम लग्जरी होटल है, और इसमें आप अपने फैमिली के या के कॉर्पोरेट इवेंट्स कर सकते हैं। आप इनको कॉल कर सकते हैं 6479653823। एंड जनाब राजा देव बादशाह जी वो कहते हैं जी मेरे पास आओ राइट कवरेज के लिए और मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाऊंगा। तो अगर आपको राइट कवरेज चाहिए तो आप राजा बादशाह जी के पास जाएं, ऑल स्टेट के साथ काम करते हैं, इनका नंबर है 6472903773। अच्छा जी, अच्छा मजद भाई जो है ना मेरे आने से पहले इन्होंने आधी कहानी तो आपको सुना ही दी है, तो वो प्यारी कहानी सुनाई, अब मैं जरा आपको दिल दुखाने वाली कहानी सुनाती हूँ। क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जो है आज बजट दिया है। अच्छा आपने कहा जी कि 10 बड़ी चीजें क्या है, 10 बड़ी चीजें मेरे पास तो आपको पता है रोने वाली होती है सिर्फ जो है, तो अगर आप रोने नहीं सॉरी उसमें गुडीज है, बहुत सारी गुडीज भी है, लेकिन मोर और लेस जो हम आपको बता रहे थे वही चीजें हैं इसमें। अच्छा जी सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी कि हमारा नेक्स्ट ईयर का जो स्पेंडिंग है वो $480 बिलियन का रहेगा, इसमें जो डेट पेमेंट्स हैं, डेट पेमेंट्स जो हैं वो उस पे जाएंगे पैसे $54 बिलियन, उसकी वजह से डेफिसिट हाई रहेगा, टैक्सेस हाई रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ स्पेंडिंग भी हाई रहेगी इनकी, लिबरल गवर्नमेंट की। इन्होंने कहा जी कि $40 बिलियन जो है हमारा डेफिसिट रहेगा और डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो, बहरहाल उन्होंने बड़ी तारीफ की अपनी, उन्होंने कहा जी कि हमारा डेट टू जो जीडीपी रेशो है वो लोएस्ट है G7 कंट्रीज के अंदर। इसके अलावा जो टैक्स है वो लगाया जा रहा है कैपिटल गेन्स के ऊपर, और जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं जी कि हम मिलिट्री के ऊपर भी स्पेंडिंग जो है अपनी बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूं जो आपने कहा था जी फ्यू बिग थिंग्स ये है कि 1.76% अपना जीडीपी का जो है अब ये लगाएंगे उसके ऊपर, अपने डिफेंस के ऊपर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने वाले हैं, नेशनल स्कूल प्रोग्राम जो है, फूड प्रोग्राम जो है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि 400,000 एडिशनल बच्चों को जो है हम देंगे तो उसके ऊपर पैसे लगा रहे हैं। 500 मिलियन के करीब जो है वो कहते हैं जी कि जो हमने कहा था कि हम देंगे हेल्थ कम्युनिटीज को, एनजीओ जो है उनको, ताकि हेल्थ के अंदर काम किया जा सके। और जो है स्टूडेंट फॉरगिवनेस लोन जो है, लोन फॉरगिवनेस जो है वो बहुत ज्यादा ऑफर की जा रही है, और फायर फाइटर्स टैक्स क्रेडिट दिया जा रहा है। वो कहते हैं जी कि ये टैक्स क्रेडिट जो है इसकी वजह से जो ये जो वॉलंटरी फायर फाइटर्स हैं ये बहुत सारे पैसे, तकरीबन $900 पर ईयर के करीब जो हैं ये बचाएंगे। हाउसिंग को बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया, उन्होंने कहा जी कि हाउसिंग के ऊपर हम बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करने वाले हैं, और जो है वो तो
3.9 मिलियन होम्स
जी बिल्कुल न्यू होम्स बनाएंगे। लेकिन वही जो मैं और माजिद भाई अभी परसों बात कर रहे थे कि ये मॉर्गेज एमोर्टाइजेशन जो है उसका पीरियड इन्होंने बढ़ा दिया है। तो अब जारी, यानी कि आपने पहले अगर लाख रुपया 25 साल में देने थे, अब आपने 30 ईयर्स में देने हैं। तो यानी उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि शायद लोगों के ऊपर बर्डन कम आ जाएगा क्योंकि उनकी इनकम नहीं बन रही, इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो ये
अफोर्डेबिलिटी तो हो गई, बट इन लॉन्ग टर्म यू आर पेइंग लॉट मोर एज इंटरेस्ट।
बिल्कुल, इंटरेस्ट में आप ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी कि ये जो है आपका अपार्टमेंट्स जो है, अपार्टमेंट्स के ऊपर भी जो आपका कर दिया उन्होंने इंक्रीज कैपिटल कॉस्ट जो है, कैपिटल कॉस्ट अलाउंस, तो वो भी है। तो ये सारी की सारी बरल डिटेल्स जो है ये हमारी वेबसाइट पे कल आएंगी, तो आप वहां पे जाके सारी और भी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि डेट सर्विसिंग में कितना है, टैक्सेस कौन से नए लग रहे हैं, और ये जो है सारे और सारी
और जो जितने इन्वेस्टर्स हैं शाजी जी, तो जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज खरीदी है और दे आर थिंकिंग दैट दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट, उन पे अब कैपिटल गेन को उन्होंने इंक्रीज किया।
जी वही मैंने कहा, तो टैक्स लगाएंगे कैपिटल गेन,
तो कैपिटल गेन जो है उस पर और भी लगेगा।
जी जी, कैपिटल गेन टैक्स ये लगाएंगे। तो ये जनाब सारी डिटेल्स जो हैं ये आपको वहां पे मिलेगी। इसके अलावा जनाब हमारी जो मेलनी जोली साहबा हैं वो अब इटली को ट्रैवल कर गई हैं, और वहां पे उनकी मुलाकातें जो हैं वो होंगी वहां पे ऑफिशियल्स के साथ, और जो G7 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी ये होंगी। इसको जो है ये 17 से 19 यानी कि 3 डेज के लिए वहां पे जा रही हैं, और अपने जितने भी इटालियन काउंटर पार्ट्स हैं, जैसे कि जो उनके इटली के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एंटोनियो तेजानी, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जितने भी लोग हैं उनके साथ मुलाकातें करेंगी। जाहिर है कि मुद्दे वही रहेंगे, यूक्रेन, जो मसले चल रहे हैं मिडल ईस्ट में, वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, और जाहिर है कि अपनी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कि कैनेडा कैसे इन चीजों को आगे लेके जा सकता है। इसके अलावा कार्डिनल जो हैं वो पेट्रो पेरोलिन, उनसे मिलेंगे, आर्च बिशप पॉल रिचर्ड के साथ मिलेंगी, और जो है हेटी और यूक्रेन के मसले पे उनके साथ बात करेंगी, और फिर उसके बाद G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो अटेंड करेंगी ये कपरी के अंदर। तो ये आज इनका सारा आइटनरी आया। स्टैट्स कनाडा की जनाब खबर आई है और उसके मुताबिक एनुअल इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर गया है मार्च के अंदर और कंपेयर टू फरवरी, क्योंकि इसकी जाहिर है कि मेन वजह आपको पता ही है, गैस की प्राइस ऊपर जाएगी तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, गैस की प्राइस नीचे आएगी तो प्राइसेस नीचे आएंगी। वो कहते हैं जी कि मार्च में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था वो ऊपर गया 2.9% से कंपेयर टू 2023 और 2.8% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज आया इसके अंदर फरवरी से। गैस प्राइसेस जो थी वो 4.5% से ऊपर गई थी कंपेयर टू 2023, तो जाहिर है उसकी वजह से सारी चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ा। उन्होंने कहा जी कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन थी वो जाहिर है कि आप सोच ही सकते हैं कि ज्यादा होगी, विच वाज अप 6.5% कंपेयर्ड विद 2023। मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट्स इन मार्च रोज बाय 25.4% ऑन ईयर बेसिस। इसके अलावा रेंट्स जो थे मार्च में वो भी इंक्रीज किए 8.5% कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर। और अच्छा, बड़ी एक खूबसूरत बात करते हैं स्टैट्स कनाडा वाले ना, वो कहते हैं जी एक्सक्लूडिंग जो है वो गैस प्राइसेस, भाई एक्सक्लूडिंग सारा कुछ चल ही रहा है पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल के साथ
हाँ ही चलेगा।
हाँ नहीं नहीं, मगर उनका ये बड़ा फनी जुमला हमेशा होता है स्टैट्स कनाडा का, एक्सक्लूडिंग गैस एनुअल इन्फ्लेशन फॉर मार्च वॉज 2.8% डाउन फ्रॉम 2.9% इन फरवरी। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है।
हाउ कुड यू एक्सक्लूड इट बिकॉज दैट इज अ बिग पोर्शन ऑफ सीपीआई।
मुझे भाई चलता ही सारा कुछ पेट्रोल पे है ना, गैस पे चलता है ना सारा कुछ,
है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें सबसे बड़ी जो आपकी
स्पेंडिंग है,
स्पेंडिंग है वो आपका जो है अलग आप भरा करे गैसलीन है,
पेट्रोल गैस,
तो इस गैसलीन को आप कंट्रोल करेंगे तो सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी।
वो कैसे होंगी, अब तो ये जो गल्फ की वॉर शुरू हो गई है और अगर आप ईरान और इसराइल के बीच में ज्यादा तेजी आ गई तो गैस की प्राइसेस और ऊपर जाएंगी, बेतहाशा ऊपर जाएंगी,
हाई रॉकेटिंग,
बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग होंगी प्राइसेस। आज ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने जनाब अनाउंस किया है कि वो तकरीबन $1 बिलियन जो है वो ये जो नायग्रा फॉल्स का हाइड्रो पावर प्लांट है उसके रिफर्बिशमेंट के ऊपर स्पेंड करेंगे। एनर्जी मिनिस्टर जो है टॉड स्मिथ, उन्होंने कहा जी कि इसकी वजह से जो स्टेशन है, ये पावर जनरेशन स्टेशन जो है, इसकी जो मुद्दत है या उसकी जो एज है 30 ईयर से और बढ़ जाएगी। ऑन्टेरियो के अंदर जो पावर जनरेशन और सब्सिडरी जो है इनकी जनरल इलेक्ट्रिक, वो कहते हैं जी कि हम रिन्यू कर रहे हैं 25 यूनिट्स एट सर एडम बेक कॉम्प्लेक्स और इस पे काम जो है 2025 के अंदर शुरू होएगा। ये काम जो है तकरीबन 15 साल के अंदर कंप्लीट होएगा, क्योंकि जाहिर है कि बहुत मेजर ये उसके अंदर चेंजेस ला रहे हैं। ऑन्टेरियो कह रहा है जी कि गवर्नमेंट जो है और टॉड स्मिथ साहब कह रहे हैं कि क्योंकि ऑन्टेरियो के अंदर बहुत तेजी से लोग आ रहे हैं और बिजली की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और बढ़ेगी आने वाले दिनों में, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ज्यादा पावर जनरेशन के प्लांट्स जो हैं या उनको बूस्ट करने के जो हैं प्लान्स बनाएं। सीएमएचसी, आपको पता ही है कि ये जो हाउसिंग स्टैट्स देती है, इनके मुताबिक एनुअल पेस ऑफ हाउसिंग स्टैट्स इन मार्च डिक्लाइंड 7% कंपेयर्ड विद फरवरी। अगेन फिर आप कह देंगे जी ये क्या हुआ, क्योंकि अनसर्टेनिटी आ गई, बजट आने वाला था, मॉर्गेज आई थी कि रेट्स आ रहे थे और गैस की प्राइसेस भी ऊपर थी, तो जाहिर है। वो कहते हैं जी सीजनली एडजस्टेड एनुअल रेट जो था दैट वाज 242,195 यूनिट्स इन मार्च कंपेयर टू 260,047 यूनिट्स इन फरवरी। ईयर ऑन ईयर मार्च जो एक्चुअल हाउसिंग स्टार्ट्स थे देवर 10% हायर इन टोरंटो, 15% हायर इन वैनकूवर। और वो कहते हैं जी कि उसकी अब वजह यह भी है कि अब बहुत सारे मल्टी यूनिट स्टार्ट्स जो हैं वो सामने आने शुरू हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली मॉन्ट्रियल के अंदर जो हाउसिंग स्टार्ट्स हैं वो डिप किए हैं 1% से, और जो है वो कहते हैं जी रूरल स्टार्ट्स जो हैं, एनुअल रूरल स्टार्ट्स जो हैं वो 21,452 यूनिट्स थे। सिक्स मंथ की मूविंग एवरेज जो थी इन मार्च दैट वॉज 243,957 विच वॉज डाउन 1.6% फ्रॉम 247,971 इन फरवरी। तो जाहिर है जनाब अब मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगी, मॉर्गेज रेट्स आपके पता नहीं ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, अगर वो वैसी बातें रहेंगी तो लोग जरा थोड़ा कॉशियसली स्पेंड करेंगे।
मोर इन्फ्लेशन रेट जो है ना ये
जी
अभी मई में एक दफा और आएगा बिफोर 6th of June व्हेन हमारे फेड्स बैठेंगे देखने के लिए कि क्या रेट बढ़ाया जाए या घटाया जाए। तो रेट जो है, मेरा अपनी पर्सनल राय ये है कि आई थिंक दे गोना फॉरगेट अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स एंड दे गोना से ओके वी गोना टेक द इनिशिएटिव एंड वी गोना कट द रेट्स।
जी 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 जी, ऐसे हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है रेट नीचे आए बिल्कुल, लेकिन बड़ा अनसर्टेनिटी है मार्केट के,
वेरी अनसर्टेन,
तो इसलिए जो है लोग अब इतने बड़े जो है अभी वो स्पेंडिंग करने के मूड में नहीं है। अच्छा जरा टिम हॉर्टन साहब जो है, टिम हॉर्टन साहब मैं कह रही हूँ, टिम हॉर्टन जो है उसने कहा जी कि अब हम अपना मेन्यू एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अब आपको इनके मेन्यू के अंदर पिज्जाज नजर आ सकते हैं। वो कहते हैं जी कि हमारे खुद के जो अपने एग्जीक्यूटिव्स हैं और शेफ्स हैं वो तो बहुत अरसे से ये ट्राई कर रहे थे, फ्लैट ब्रेड पिज्जा जो है बहुत सालों से हम ट्राई कर रहे थे और हम देख रहे थे कि ये क्या ऐसे हो सकता है, तो उसके अंदर वो कहते हैं जी कि अब हम रोल आउट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जी जाहिर है कि ज्यादा मार्केट शेयर जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं और इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स आएंगे, स्पाइसी फ्लेवर्स आएंगे और दूसरे आएंगे, चीज वाले आएंगे, तो वो कहते हैं कि
हमारा देसी पिज्जा आ जाएगा, परवाह ना करें,
देसी पिज्जा आ जाएगा जैसे कि टिक्का मसाला पिज्जा, ठीक है जी। वो कहते हैं जी फ्लैट ब्रेड पिज्जा जो है वो अब इसी हफ्ते में आपको हमारे रेस्टोरेंट्स में, हाँ स्टार्टिंग टुमारो, तो आपको नजर आएंगे हमारे रेस्टोरेंट्स में और ये सबको पसंद आएंगे, चाहे कोई बूढ़ा है चाहे कोई बच्चा है। और वो कहते हैं जी कि हम चाहते हैं कि हम सिर्फ ब्रेकफास्ट तक रिस्ट्रिक्ट ना रहें या सिर्फ जो है थोड़े बहुत स्नैक्स ना हम दें, बल्कि आप जब भी हमारे दरवाजे पे आए तो आपको कुछ ना कुछ खाने को मिले।
लंच एंड डिनर, दे आर टारगेटिंग लंच एंड डिनर, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो मैकडॉनल्ड्स एंड जो
पिज्जा हट वगैरह
तो उनसे कंपटीशन करके उनके वो कस्टमर्स जो लूज कर रहे हैं ये वापस लेके आए,
वो आ ही जाएंगे इनके पास कस्टमर, क्योंकि इन्होंने इतना चीपली बेचना है, एक एक डॉलर का बेचेंगे तो सर उन बेचारों का तो बिजनेस गया, खत्म हो गया ऐसे। अच्छा जी, यूके की जो जॉब मार्केट है जनाब, उसके अंदर भी बहुत ही बुरे चीजें चल रही हैं, क्योंकि जो जॉब मार्केट है वो बहुत ही खराब है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज कर गया है 4.2% से बिटवीन दिसंबर टू फरवरी, और वो कहते हैं जी कि ये हाईएस्ट लेवल है इन सिक्स मंथ्स। रेट ऑफ पीपल जो है आउट ऑफ जॉब्स वो भी नीचे 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 जा रही हैं। इकोनॉमिकली इनएक्टिव जो लोग हैं, जो कहते हैं जी कि जो काम देख ही नहीं रहे होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा, उनकी भी तादाद बढ़ गई है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है शायद अपने इंटरेस्ट रेट समर के अंदर कट करेगा। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैट्स जो है वो भी कह रहा है कि मार्केट जो है कूल होती जा रही है जॉब्स की। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 3.9% पे राइज किया है इन द लास्ट थ्री मंथ्स फ्रॉम जनवरी, और जो है वो कहते हैं जी कि फिर भी थोड़ा सा सुधार तो आया, क्योंकि जनवरी में तो ये 4% को टच कर रहा था। बहरहाल जी 0.1% से नीचे है, तो ऐसी कौन सी बात है। इसके अलावा वो उन्होंने जो कहा है कि जी इंग्लैंड के अंदर इस वक्त 1.4 मिलियन अनएम्प्लॉयड हैं, एंड द पीरियड दे हैव कैलकुलेटेड इज बिटवीन दिसंबर टू फरवरी, उसके अंदर जो है वो कहते हैं बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज फॉर अ चेंज, एंड दिस इज अ बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज कि ये चाइना पहुंचे हुए हैं जी, चाइना पहुंचे हुए हैं। आपको अगर आपने अर्ली मॉर्निंग देखा होगा तो सारे ट्विटर के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर दिस वाज अ ह्यूज न्यूज कि जी ये चांसलर साहब जो हैं बीजिंग में पहुंचे हुए हैं, जहां पे कि उनकी मुलाकातें जो हैं चाइनीज लीडर्स के साथ हुई हैं, खासतौर पर जो उनके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग उनके साथ। शोल्ज साहब जो हैं उन्होंने इनको बताया जी कि ये जो वॉर चल रही है रशिया की यूक्रेन के अंदर, ये ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है और चाइना को अपना थोड़ा प्रेशर यूज करना चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। इन्होंने कहा जी कि जो है पुतिन साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर जो है हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेट आया तो हम न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर शोल्ज साहब ने कहा जी कि अगर ऐसा रशिया ने किया तो वो वायलेट करेगा प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ इनवायलेबिलिटी ऑफ नेशनल बॉर्डर्स। उन्होंने कहा जी कि चाइना को अपना प्रेशर यूज करके इन सारे मसलों को अब हल तो करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया कि जी आप जो है बड़ा उसको सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखा रहे हैं। चाइना जो है आपको पता ही है कि उसने जो यूक्रेन की वॉर है उसमें कोई भी क्रिटिसिज्म रशिया को नहीं दिखाया था, बल्कि वो जो है कॉन्स्टेंटली उसके साथ ट्रेड कर रहा है, जो कि और जो यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो कहती है कि बीजिंग वैसे तो डिनाई करता है कि हम उसको कोई मिलिट्री एड रशिया को नहीं दे रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली जो है अपना इक्विपमेंट भी सेल कर रहा है मॉस्को को, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। और इसीलिए वो कह रहे हैं जी कि कोई रशिया की वॉर में ना तो कमी आ रही है और ना ही उनके ऊपर कोई बैड इफेक्ट जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उनका कुछ आ रहा है, क्योंकि ट्रेड कॉन्स्टेंटली चल रही है। अभी ट्रेड सिर्फ चाइना के साथ नहीं, इंडिया के साथ भी उनकी चल रही है, तो इसलिए भी है। तो वो कहते हैं जी बहरहाल इन दोनों की जो मुलाकात है बड़े अच्छे माहौल के अंदर हुई, और इन दोनों ने ही कहा चाइना और जर्मनी ने कि जी हम यूएन चार्टर के ऊपर कायम रहेंगे और हम बिल्कुल अपोज करेंगे न्यूक्लियर वॉर, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जाए और इस तरह की कोई वॉर जो है वो शुरू की जाए। बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है कि जी जर्मन चांसलर जो है चाइना में आए हुए हैं। प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स जो हैं वो बेतहाशा डिफरेंट सिटीज के अंदर अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि इलिनॉय, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और गोल्डन गेट ब्रिज और डिफरेंट जगहों के ऊपर हो रहा है। उस सिलसिले में उन्होंने जो है वो कहते हैं जी सारी खासतौर पे शिकागो के अंदर जो ओहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके पास की तमाम लेन्स जो है वो बंद की हुई हैं। आपको पता ही है कि ओहारा जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएस एयरपोर्ट्स है, तो वहां पे ये लोग प्ले कार्ड्स लेके खड़े हुए थे और इसमें चूंकि ये था एयरपोर्ट के पास था तो बहुत सारे अरेस्ट भी लोगों ने किए हैं। शिकागो पुलिस ने कहा जी कि हमने बहुत सारे लोगों को कस्टडी में इसलिए लिया था कि अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते साइडों पर रहकर तो हम कुछ ना कहते, लेकिन इन्होंने ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट किया है। कैलिफोर्निया के अंदर भी जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उन्होंने नॉर्थ बाउंड 1880 की जो लेन्स थी उनको ब्लॉक किया इन ओकलैंड और जो है वो चेन्स बना के वहां पे खड़े रहे। इसके अलावा जो है इनका जो मोर्चा था वो गोल्डन गेट ब्रिज पे भी निकला और दोनों तरफ की जो ट्रैफिक थी वो खराब हुई। इन्होंने बड़े बड़े जो है वो प्ले कार्ड्स कैरी कर रहे थे जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टाइन इन एंड इसराइल अपार्टाइड और स्टॉप वॉर इन गाजा, ऐसे करके और ओरेगन के अंदर भी इसके अलावा जो है वहां पे जो ट्रैफिक मेजर उनकी हाईवे है उसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो शट रही क्योंकि वहां पे भी ये बहुत मेजर इन्होंने मार्च निकाला हुआ था। फिर ये ईस्ट कोस्ट में भी ब्रुकलिन का जो एरिया है उसको और मैनहट्टन बाउंड जो ट्रैफिक है उसको काफी नुकसान पहुंचा क्योंकि ब्रुकलिन जो ब्रिज है उसके ऊपर ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो काफी डिस्ट्रप्शंस जो हैं अमेरिका में चल रही हैं, खासतौर पे लोग कह रहे हैं कि ये जो आर्म्स दे रहा है अमेरिका कॉन्स्टेंटली इसको इसराइल को, ये इनको फौरन बंद करने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस जो है उसने आज ईरान और इसराइल दोनों को ही कहा है कि भाई आप थोड़ा जो है रिस्ट्रेंट शो करें, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ना करें। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस जो थे वो बोल रहे थे और उन्होंने बात करते हुए कहा कि भाई वर्ल्ड जो है एक और वॉर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप डिफ्यूज करें और डी एस्केलेट करें और फॉरन स्टेप्स लें कि ये चीजें जो हैं ये इसके अंदर बेहतरी आए। एक इमरजेंसी मीटिंग इन्होंने आज बुलाई हुई थी। इस मौके पर बात करते हुए रॉबर्ट वुड जो कि डेप्यूटी यूएस अम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने कहा जी कि हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को कि वो कंडेम करे ईरान का ये जो अटैक था इसराइल के ऊपर और हम बिल्कुल ये जो ईरान का एक्शन है इसको अनआंसर्ड जाने नहीं दे सकते हैं और ईरान जो है उसको अकाउंटेबल हम ठहराएंगे जो कुछ उसने किया। ईरान के जो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर थे आमिर सईद इरावानी उन्होंने कहा जी कि हमने ये जो एक्शन है इसराइल की वजह से लिया है क्योंकि उसने सबसे पहले हमारा जो डोमेस्कस में सीरिया में जो हमारा डिप्लोमेटिक मिशन था उसके ऊपर अटैक किया था जो कि एब्सोल्यूटली अनकॉल्ड फॉर था, तो हमको अपना नेसेसरी और प्रोपोर्शनेट जो एक्ट है वो करना था। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फेलियर है कि वो दुनिया के अंदर पीस और सिक्योरिटी जो है वो नहीं रख सकता है और इसराइल के अटैक को उसने कंडेम नहीं किया है बल्कि हमारे ऊपर डिप्लोमेटिक जो प्रेशर है वो बढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए तेहरान जो है उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी कि वो जो है रिस्पॉन्ड करती और हम बिल्कुल चाहते नहीं है कि चीजें एस्केलेट करें या वॉर की तरफ जाएं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसराइल जो है उसका थ्रेट और अग्रेशन जो है उससे दुनिया को बचाने की जरूरत है। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को कहा कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है क्योंकि आप कोई ऐसे मेजर्स ही नहीं ले सक रहे हैं कि जिसकी वजह से कि इसराइल का ये जो जुल्म खासतौर पे जो जीनोसाइड कर रहा है गाजा में उसको ये रोके, तो असल में रियल थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी इसराइल है। अब इस पर इसराइल ने जारा कहां चुप रहना था। इसराइल के जो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर हैं गिलाड एर्डन उन्होंने कहा जी कि ईरान जो है इनफैक्ट नंबर वन ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ टेरर है और पायरेट स्टेट है और हम कंडेम करते हैं ईरान को और हम उनको बताना चाहते हैं कि दुनिया जो ऐसे फर्क बैठी नहीं रहेगी आपके अटैक के पास क्योंकि आपने रेड लाइन क्रॉस की है और हम वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट। मतलब है वो जो पहले जमाने में होता था ना कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस का रिवाज जो है फिर से दुनिया में ये चल पड़ा है। वो जो थे ना बर्टन रसल साहब बहुत बड़े स्कॉलर कहते थे जी अब एज ऑफ रीजन शुरू हो गई है। ये लग रहा है आपको कि ये एज ऑफ रीजन में हम रह रहे हैं या एज ऑफ रीजन यहां पर चल रही है? एज ऑफ रीजन तो चल ही नहीं रही है, जो इंतहाई अनरीजनेबल किस्म के जो नेशंस हैं बस वो दुनिया को हांक रहे हैं, दुनिया उनसे हांकी जा रही है भेड़ बकरियों की तरह। ना तो अंकल सैम साहब जो है उनको चैन है, ना इसराइल को चैन है, ना किसी और को इस तरह का जो ताकतवर उसको चैन है। जो जहां पे वो किसी कमजोर को देखते हैं वो कमजोर को लताड़ने की कोशिश कर लेते हैं। यानी अब आप देखें इस मसले में कि सारा यूरोप जो है अगेंस्ट हुआ है ईरान का कि ईरान ने क्यों अटैक किया जी इसराइल पे। भाई आप इसराइल को क्यों नहीं कंडेम कर रहे हो कि तुम कॉन्स्टेंटली वॉर को क्यों बढ़ा रहे हो, तुम गाजा से आगे वॉर को, पैलेस्टाइन से आगे वॉर को क्यों लेके जा रहे हो, तुम कॉन्स्टेंटली लेबनान के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो, तुम क्यों ईरान के जो इंटरेस्ट हैं सीरिया के अंदर उसमें अटैक कर रहे हो। चलो वो तो ईरान के इंटरेस्ट हैं लेकिन मुल्क तो सीरिया है ना, तो यानी कि तुम लेबनान में भी अटैक कर रहे हो, सीरिया के अंदर भी अटैक कर रहे हो, तो भाई तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों वॉर को बढ़ा रहे हो। बजाय इसके कि वेस्ट जो है इसको रोके, ये जो अग्रेशन इतनी दिखा रहा है इसराइल इसको स्टॉप किया जाए, कॉन्स्टेंटली जो है ईरान को कहा जा रहा है कि तुम्हें हम सिखाएंगे सबक जो है तुम्हें सबक सिखाएंगे। भई हद हो गई है, एक तो आप पैलेस्टीनियंस के मुल्क में घुस के बैठे हुए हैं, आप ऑक्यूपायर हैं, आप एक ऑक्यूपेशन आप पावर है, आपने उनके मुल्क में भी कब्जा किया हुआ है, लेबनान पे आप हमले कर रहे हैं, सीरिया पे कर रहे हैं, ईरान को आंखें दिखा रहे हैं और फिर भी सही आप ही हैं। क्या बात है जी, क्या बात है आपकी। यानी वो जो है वो कहते हैं कि नाले चोर थे नाले चतर, भाई हद हो गई है, हर तरह का अग्रेशन आपने मचाया हुआ है मिडिल ईस्ट में, और फिर आप लोगों को आंखें भी दिखा रहे हैं, और वेस्ट जो है जो बड़ा जी बनता है ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा चैंपियन, अभी उसको कोई ह्यूमन राइट्स नहीं नजर आ रहे। 35,000 के करीब पैलेस्टीनियंस को इन्होंने मार दिया है, सदर्न लेबनान के ऊपर जो इन्होंने अटैक्स किए हैं उसमें बंदे मर गए हैं, सीरिया में जो अटैक किया उसमें 13 बंदे मर गए हैं, जो ईरान का जो इधर मिशन है उसके ऊपर। तो ये नहीं गवर्नमेंट को, दुनिया की गवर्नमेंट्स को नजर आ रहा बड़ी बड़ी जो ये बैठी हुई है और ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं और इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो रहा है। तो अब ये इसराइल के कोई वायलेशंस नहीं नजर आ रहे भाई आपको, खासतौर पे जो अमेरिका है, ये मतलब है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बाइडन साहब आप किस ख्याल में बैठे होते हो, आप बैठे किस ख्याल में होते हो। तो सही लोग कहते हैं कि अगर ट्रंप साहब होते तो ये सब कुछ दुनिया के अंदर जो इतनी तबाही आई हुई है ये ना आती, क्योंकि वो वॉर्स पे बिलीव नहीं करते थे। आपने तो फिर आते सारी दबादब वॉर्स जो है वो आपने हर दुनिया के हर हिस्से में शुरू करा दी है। तो ये जो दुनिया का इतना पावरफुल लीडर है उसका ये काम होता है कि वो दुनिया के अंदर वॉर्स कराए, वॉर्स कराए कि पीस कराना आपका काम है। तो बहरहाल जी आज जी फिर बड़ा लताड़ा जी ईरान को, और बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है ये वेस्ट का, इंक्लूडिंग हमारा जो कनेडा है, ये जो ये लताड़ रहे हैं ईरान को, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, एब्सोल्युटली कोई इनका उसको करना बनता नहीं है, उसने बिल्कुल रिटेलिए, यानी ये हद हो गई है। आप दूसरे के मुंह पे थप्पड़ मार के जा रहे हैं और आप कह रहे हैं अगले बंदे को कि तुमने आगे से मुझे थप्पड़ नहीं मारना, तुम अगर थप्पड़ मारोगे तो तुम रेड लाइन क्रॉस करोगे। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, चलो जी ठीक। अच्छा जनाब, ये जो एक कमीशन बिठाई गई थी आपको पता ही है कि फैजाबाद के धरने के ऊपर, आज जो वो फैजाबाद का जो धरना था उसके ऊपर जो कमीशन बिठाई थी उसने कम्प्लीटली क्लीन चिट दे दी है आईएसआई के जो उस वक्त के चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, और डीजी रेंजर्स जो थे मेजर जनरल अजहर नवीद हयात साहब, जिन्होंने के जाके पैसे बांटे थे वहां पे जो सिट इन के पार्टिसिपेंट्स थे। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2017 में ये जो सिट इन हुआ था तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान की तरफ से इसमें फैजाबाद के ऊपर, जिसने कि सारी वहां पे ट्रैफिक रोकी, लोगों को तंग किया और बड़ी हुलड़बाजी वगैरह भी वहां पे हुई, तो उसको फिर उधर वहां पे आर्मी के चीफ और आईएसआई के डीजी क्यों गए, उन्होंने क्यों उनके साथ बात की, क्योंकि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बातचीत हुई। तो इसके ऊपर पूरी एक प्रोब बिठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर ये जो फिर कमीशन बना था उसकी आज फाइंडिंग्स आई हैं। उन्होंने सारा का सारा मलबा जो है उस वक्त की जो पंजाब गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की, जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर डाल दिया है। उन्होंने कहा जी कि पंजाब गवर्नमेंट इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, हालांकि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिखा, और उन्होंने कहा जी कि कोई भी पॉलिटिकल ऑफिशियल जो है उसने जो कोई भी जो आर्मी की एजेंसी या स्टेट के इंस्टीट्यूशन थी उनकी इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ चूंकि हमको नहीं दिया है कि उनका कोई ताल्लुक या डायरेक्ट लिंक था टीएलपी के सिट इन के साथ या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का उनके साथ ताल्लुक था, इसलिए किसी भी गवर्नमेंट की एंटिटी का उन्होंने नाम नहीं लिया है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनके बारे में आप खामखा का जो है वो उनको इन्वॉल्व ना करने की कोशिश करें, लेकिन उसके साथ साथ इस कमीशन ने कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को आपको लॉ के दायरे में लाना पड़ेगा, लेजिस्लेट करना पड़ेगा। और आर्मी को भी उन्होंने कहा है कि आप एक बहुत ही सेक्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट है, यानी कि आपकी बहुत ही इज्जत है स्टेट के अंदर, तो आपको बिला वजह सिविल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और आप जब नहीं करेंगे तभी पब्लिक की नजरों में आपके ऊपर एक जो है वो ट्रस्ट बैठेगा और लोग आपको जो है पसंद करेंगे। तो यानी कि नाम ना लेते हुए, मिलिट्री के ऊपर इतना जोर ना देते हुए उन्होंने कहा जी कि मिलिट्री को यानी अपनी बैरक्स में ही बैठना चाहिए और जरा चैन करना चाहिए, और सिविल जो गवर्नमेंट है उसके हर मसले में टांग नहीं मारनी चाहिए, कहना वो ये चाहते थे, लेकिन जरा उन्होंने थोड़े से बड़े प्यारे किस्म के लफ्ज यूज किए हैं। अगर आज आप इंडियन मीडिया देख रहे हैं तो इंडियन मीडिया के ऊपर एक जो रिपोर्ट है उसको काफी जो है वो फ्लैश किया गया है, इनफैक्ट इंडिया में इसके ऊपर बात की जा रही है, और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे अपने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी और यूट्यूबर्स जो हैं वो भी उसके ऊपर बहुत सारी बात कर रहे हैं, और इसके अंदर बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जैसे कि शाहीन सिबाई की तरह के सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी इस डिस्कशन के अंदर शामिल हैं। हुआ क्या है, हुआ यह है कि बड़ा क्वाइटली जिसको कि कोट ही नहीं किया और जिसको कि कवर ही नहीं किया पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स ने, वो ये हुआ है कि पाकिस्तान के एक टॉप जनरल लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर उनको जो है सैक कर दिया गया है, और ये बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो जनरल एमन बिलाल सफदर साहब थे ही वाज नेक्स्ट इन लाइन टू बी पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इसका पाकिस्तानी मीडिया को कवर ना करना इसने जो दुनिया के अंदर काफी खलबली मचाई, और इसीलिए जो है सीनियर जर्नलिस्टों ने और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों ने और यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी कि ये जो एमन बिलाल सफदर साहब थे ये जो कॉर्प्स कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी 5 मार्च की 2024 की जीएचक्यू के अंदर, उसमें इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा कि भई आप हर चीज में यानी कि अपनी भाजी मत मारो, आप साइड पे बैठो और इमरान खान जो है उसके साथ अपने डिफरेंसेस को अपने पर्सनल डिफरेंसेस आप मत बना लो। अब जाहिर है ये तो अब जो सिपहसालार हैं आपके मुल्क के आसिम मुनीर साहब, उनको ये बातें पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा जी कि तुम फौरन अपना रेजिग्नेशन दो। लेकिन इससे पहले कि वो कहते हैं कि जी आप अपना रेजिग्नेशन दें, इन्होंने कहा जी अप्रैल 4 तक आप जो है आपके पास से हमें रेजिग्नेशन आ जाना चाहिए। इन्होंने अप्रैल 2 को ही जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और वैसे तो आपको पता है कि जो मिलिट्री का जनरल कभी जब रिटायर होता है तो उसको बड़ी तोपों की सलामी वगैरह दी जाती है, बगैर कोई फेयरवेल लिए इन्होंने छोड़ दिया। और इन्होंने कहा जी कि आई एम एब्सोल्युटली डिस्गस्टेड विद द वे द मिलिट्री पाकिस्तान मिलिट्री इज वर्किंग एट द मोमेंट, बिला वजह के आपने जो है मुल्क के अंदर इतना क्राइसिस बनाया हुआ है और उसकी वजह से उसके साथ ही ये जो है उमरा करने के लिए फिर चले गए। अच्छा, अब इसके ऊपर शाहीन सिपाही साहब जो हैं उन्होंने बड़ी फिर इसके ऊपर बातचीत की, जिसको कि फिर इंडियन मीडिया ने उठाया और भी कुछ लोगों ने बात की। उन्होंने कहा जी कि ये साफ साफ शो करता है कि मिलिट्री के अंदर जो है अब एक रिफ्ट है, लोग बिल्कुल जो है वो आसिम मुनीर को पसंद नहीं करते हैं, और अगर इसकी तरह के 2-4 और मिलिट्री के जनरल्स खड़े हो जाते जो कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू शाहीन सिपाही जो कि आसिम मुनीर साहब को नहीं पसंद करते हैं, वो अगर बिलाल सफदर के साथ खड़े हो जाते तो मुनीर साहब जो है उनको पैक कर दिया जाता अपनी पोस्ट से। इसके साथ साथ सलमान अहमद जो म्यूजिशियन है, आपको पता ही है बहुत बड़े, हम उनके साथ बड़े इंटरव्यूज भी करते हैं, उन्होंने तो आसिम मुनीर साहब को कहा जी कि ही इज पेट्रीफाइड यानी कि बहुत ही डरा हुआ है, ही इज अ पैरानोया सुपर किंग। और ये जो है उन्होंने सलाम पेश किया जनरल एमन को, लेफ्टिनेंट जनरल एमन को, उन्होंने कहा जी कि हम सलाम इनको पेश करते हैं जिन्होंने बड़ी जुरत का मुजाहरा किया। और हालांकि ये जो थे नेक्स्ट इन लाइन थे, और भी जो बहुत सारे फिर सीनियर जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी इसके ऊपर टिप्पणी दी। उन्होंने कहा जी कि अगर एक ऐसा जनरल जो कि नेक्स्ट इन लाइन टू बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान बनने वाला था, अगर उसको भी इस तरह से जाना पड़ रहा है तो लग रहा है कि बिल्कुल ही एब्सोल्यूट क्लाउनरी जो है पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर चल रही है। एक और जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि जी ये जो इवल आसिम मुनीर है ये खामखाई की पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हो रहा है और ये फैशिज्म जो है पाकिस्तान में चला रहा है, और जो है जो पाकिस्तान के ज्यादातर जो अच्छे जनरल्स हैं उनको पाकिस्तान मिलिट्री से ये फायर किया जा रहा है और बाकी जो अब पाकिस्तान मिलिट्री में रह गया वो गार्बेज है जिसको के मुल्क की और उसकी कोई नहीं है। यानी कि ये मिलिट्री के ऊपर अटैक नहीं है जर्नलिस्टों का, ये जो ऊपर जो 2-4 जनरल्स बैठे हुए हैं उनके ऊपर ये सारी डिस्कशन हुई, जिसको कि अगर आपने वही मैंने जैसे अभी आपको कहा कि इंडिया में अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने बड़ा इसको इस खबर को उठाया और इसके ऊपर जाहिर है कि काफी डिस्कशन वगैरह भी आई। तो एनीवेज जी अब वेरी वेरी जो था जो सेन माइंड आप कह सकते हैं पाकिस्तान मिलिट्री का लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर, ही हैज रिजाइंड ऑलरेडी, तो ऐसे है। ठीक है जी, तो ये जनाब बातचीत चली। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं 2 दिन के दौरे के ऊपर, उनकी आज जो है एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब के साथ। उन्होंने कहा जी बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर एरियाज हैं जहां पे कि हम अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उन्होंने कहा जी कि मैं ये जो दौरा कर रहा हूं ये जब शहबाज शरीफ साहब मोहम्मद बिन सलमान जो हमारे क्राउन प्रिंस हैं उनसे मिले थे उनकी डायरेक्शन के ऊपर मैं जो है पाकिस्तान में आया हूं, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी के ऊपर और जो उन्होंने मुझे वेलकम दिया। और वो कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका साथ देंगे और रीजन के अंदर सिक्योरिटी लाने की कोशिश करेंगे। पीटीआई की सीनियर लीडर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं जी उन्होंने जो है एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पिटीशन डाली है, और ये पिटीशन उनके लॉयर्स अहमद अवेस और राणा मुदस्सर ने डाली है, और उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वायलेट किया है लॉ और मेरी विक्ट्री जो थी फरवरी 8 के इलेक्शंस में उसको डिफीट में चेंज किया। यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो फाइट कर रही थी एनए 130 लाहौर 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी से X14। अब ये रोमन अगर है तो फिर ये तो बनेगा क्या बनेगा X14 क्या बनेगा 1014 कुछ ऐसे करके के एनी वेज NF130 की ये सीट थी। तो उससे वो कहते हैं जी के जो है मेरे पास ज्यादा वोट्स थे लेकिन आपने रिजल्ट्स चेंज किए और मुझे हराया और नवाज शरीफ साहब को 171,000 से ज्यादा वोट्स किए और मुझे जो है मेरे वोट्स को कम करके 104,000 पे रखा। तो बहरहाल जी उन्होंने आप ये पिटीशन लाया और उन्होंने कहा जी इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है और इसको फिर से आप इस मुद्दे को उठाएं। पीडीआई के सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान साहब जो है उन्होंने पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है उसको कहा जी कि ये जो है ये पिक पॉकेट्स की यानी कि ये जेब कुतरों की गवर्नमेंट है और ये लोगों का हार्ड अर्न मनी जो है ये उसको कुतरते चले जा रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने कहा जी कि बजाय इसके कि कंप्लीट रिलीफ देते मैसेज को ये चीजों को अनएम्प्लॉयमेंट को और इन्फ्लेशन को बढ़ावा देते जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की जो पंजाब गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी बड़ा एतराज किया। उन्होंने कहा कि मोहतरमा को इकोनॉमिक्स के बारे में तो पता है नहीं, जज्बाती फैसले करती जा रही हैं। उसका उनका जो रुख था क्रिटिसिज्म का वो इसलिए था उस तरफ था कि मरियम साहिबा ने थोड़े दिन पहले रोटी की कीमत जो है अब 16 रूपीज कर दी है और कहा जी कि इसकी कीमत कम करो ताकि गरीब रोटी खा सके। बहुत सारे जो नान भाई थे वो कह रहे थे जी कि हम इसकी कीमत 16 रूपीज कर देंगे अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमको सब्सिडी मिलेगी। तो उन्होंने कहा जी कि फ्लोर जो यानी कि आटा जो है, उमर साहब का कहना था कि आटे की कीमत इतनी ज्यादा है और जो नान है वो तो गवर्नमेंट रेट के ऊपर सेल किया जा सकता ही नहीं है, तो मरियम बीबी को थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो सुनामी ऑफ इन्फ्लेशन लेकर आए हुए हैं और ये जो फेडरल गवर्नमेंट क्लचेस के ऊपर यानी कि बैसाखियों के ऊपर जो चल रही है वो इसलिए है क्योंकि यहां पे और पंजाब की गवर्नमेंट में भी जो है